الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت أنا يا رسول الله قال فأخذ بيدي وعد خمسا اتق المهارم تكن عابد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحسن إلى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهك فإن كسرة الزهك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کو سنائی گئی. روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات, کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور حاصل کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلیم اور تربیت کا انداز مکمل طور پر فطری تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی انداز سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تربیت فرماتے تھے. کوئی بھی بات کسی سننے والے کے سامنے اگر ایسے وقت پیش کی جائے کہ اس کے دل میں طلب نہ ہو تو وہ اپنا کوئی اثر نہیں رکھتی. اصل یہ ہے کہ سننے والے کے دل میں طلب ہو اور اس کے بعد کوئی بات اس کو کہی جائے تو اس صورت میں وہ توجہ سے سنتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمانا چاہتے تھے آپ نے اس کے لیے پہلے دل کی زمین کو ہموار کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے یہ سوال کیا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے؟ جیسے درسگاہ میں استاد طلباء کو، بچوں کو جب پڑھاتا ہے، کون ہے جو میرے سوال کا جواب دے گا، سب بچے ہاتھ اونچا کرتے، میں دوں گا میں دوں گا، متوجہ کرنا مقصود، دل میں بٹھلانا مقصود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا جو کچھ ارشاد فرمانا تھا اس کے لیے پہلے سے قلوب کی زمین کو ہموار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال والا انداز اختیار کیا، فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو حاصل کرے اور سیکھے؟ آگے فرماتے ہیں، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرے یا ایسے کسی آدمی کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی کسی بھی بات کو جب کوئی آدمی سیکھے تو کس نیت سے سیکھے، کس ارادے سے سیکھے، وہ بھی سکھلا دیا، بتلا دیا کہ ہم اور آپ جب دین کی باتوں کو لینے کے لیے بیٹھیں تو ہمارا گویا ارادہ اور ہماری نیت اولین مرحلے میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سن کر خود عمل کریں گے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے بندے جو اس پر عمل کرنے والے ہوں ان کو بتائیں گے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ اسی غرض سے علم حاصل کرنے کی تاکید فرماتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، قبیلہ عبد القیس، یہ ایک قبیلہ تھا بحرین کے اندر آباد تھا، ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ باتیں دریافت کرتے ہوئے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مشرکین اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا علاقہ پڑتا ہے، اس لیے ہم جب چاہیں اپنی مرضی سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، بلکہ عاشور حرم، وہ مہینے جو حرمت والے ہیں، جن میں یہ مشرکین بھی کسی کی جان مال وغیرہ کو چھیڑتے نہیں تھے، گویا امن و امان کا ایک ماحول قائم رہتا تھا، سفر کرنا آسان ہوتا تھا، کسی کو اپنی جان کا یا اپنے مال کے لوٹ لیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، تو ایسے دنوں میں لوگ سفر کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان حرمت والے مہینوں ہی میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، جب چاہیں حاضر نہیں ہو سکتے، گویا اس وقت ہماری جو حاضری ہوئی ہے یہ بڑا غنیمت کا موقع ہے، آپ ہمیں کچھ دو ٹوک باتیں ایسی بتلا دیجئے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں، وَنُخْبِرُ بِهِمَنْ وَرَاعَنَا، اور ہم اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کو ان باتوں سے آگاہ کریں، گویا انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو سوال کیا اور اس کا جواب طلب کیا تو اس میں اپنا مقصد دو ہی چیزیں بتلائی، کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل کر کے گویا جنت میں داخل ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے اللہ کے بندوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ حضور کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی اور حضور نے اس کو برقرار رکھا، گویا یہی اسلامی طریقہ ہے۔ تو بہرحال علم جو بھی، دین کی جو بات بھی حاصل کی جائے، سنی جائے، تو اس میں آدمی کی دو ہی نیتیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ میں خود اس پر عمل کا اہتمام کروں گا، اور دوسرا اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچاؤں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ من یاخد عنی هؤلاء الکلمات, کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے حاصل کرے, فیعمل بهن, اور سیکھنے کے بعد ان پر عمل کرے, و او یعلم من یعمل بهن, یا کسی اللہ کے ایسے بندے کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کی نقل کرنے والے ہیں فرماتے ہیں قل تو آنا یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش اور گویا آپ کے اس ارشاد کے جواب میں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں, گویا آپ کی باتیں حاصل کروں گا, عمل کروں گا, دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں گا جو اس پر عمل کرنے والے ہوں. چنانچہ جب انہوں نے یہ جواب دیا فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَدَّ خَمْسًا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور میری انگلیوں پر پانچ باتیں آپ نے گنوا کر بتلائی. یہ بھی گویا تعلیم کا ایک مؤثر طریقہ ہے کہ وہ سننے والا پورے طور پر متوجہ ہو, آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے, اس کی انگلیوں پر گنوائیں گے, اس سے بات کریں گے, تو وہ گویا پوری توجہ سے سنے گا, اس کو حاصل کرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میری انگلیوں پر پانچ باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گنوائی بتلائی. پہلی بات کیا تھی, اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تم ان چیزوں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. گویا کوئی آدمی اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اپنے آپ کو ان سے بچانے کا اہتمام کرے. اب دیکھیے یہاں محارم کا لفظ استعمال کیا, سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر فرائض اور واجبات بھی ہیں, یعنی بہت سے وہ کام بھی ہیں جن کو کرنا اسلام نے ضروری قرار دیا ہے, جن کو فرائض اور واجبات سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ اس میں وہ بھی آ گئے, اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہے گا وہ فرائض کو ادا کرنے کا اہتمام ضرور کرے گا, اس لیے کہ فرائض کا چھوڑنا کرنا ضروری اور واجب ہے اور چھوڑنا حرام ہے. جب حرام سے بچے گا تو فرائض کا کی ادائیگی ہو جائے گی. گویا اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو. اسی کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں تقویٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ تقویٰ کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اور بعض آیتوں میں تو ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ اس کا حکم دیا گیا. اور جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اس چیز کا کرنا فرض اور ضروری ہو جاتا ہے. یہ تقویٰ کا لفظ عام طور پر ہم اور آپ جو سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ جب ہم اور آپ تقویٰ کا لفظ سنتے ہیں تو گویا ہم نے اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھا ہے تقویٰ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص خاص بندوں کا کام ہے, کہاں میں اور کہاں تقویٰ, میری کیا حیثیت. گویا پہلے ہی مرحلے میں اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں, حالانکہ قرآن میں باقاعدہ تقویٰ کا حکم دیا گیا. گویا ہر مومن کے لیے تقویٰ کیا ہے, ضروری ہے, فرض ہے, یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے کہ بھئی کرو تو اچھا نہ کرو تو نہیں, نہیں, ہر مومن کے لیے تقوی کو لازم قرار دیا گیا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس تقوی کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. حقیقی مفہوم تقوی کا کیا ہے؟ تقوی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو کے اندر بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا. دو معنی ہوتے ہیں ڈرنے اور بچنے کے معنی میں. متقی بمعنی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا. پرہیز کرنا بچنا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اور ڈرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ڈرنے کا مطلب، لفظ ڈر جب بولا جاتا ہے تو ڈر کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ کوئی آدمی کسی تکلیف دینے والی، نقصان پہنچانے والی چیز سے ڈرے، سانپ سے ڈرے، شیر سے ڈرے. وہ ڈر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ڈر جو کسی کی محبت، عظمت اور عقیدت کی نتیجے میں دل میں اس کے متعلق ہوتا ہے. ایک بیٹے کو جو اس کے باپ کی محبت، اس کی عظمت، باپ بھی معمولی نہیں، باپ بھی بڑا عالم ہے، فاضل ہے اور بڑے اونچے مقام پر فائز ہے، ایسے باپ کا جب بیٹا اپنے باپ کی محبت بھی ہوگی، عظمت بھی ہوگی، اس کی عقیدت بھی ہوگی، وہ دل میں یوں سوچے گا کہ کوئی ایسا کام جو میرے باپ کو ناپسند ہو، میرے متعلق علم میں آنا نہیں چاہیے، کوئی ایسی حرکت میں ہرگز نہیں کروں گا جو میرے باپ کو پتا چل جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے میرے باپ کو تکلیف پہنچے. یا جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے متعلق جس کی محبت، عقیدت، عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، ایک سالک اپنے شیخ کے متعلق اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی ایسا کام، میری کوئی ایسی حرکت جو نامناسب ہو، میرے استاد یا میرے شیخ کے علم میں آنی نہیں چاہیے، گویا اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا ہے. یہ ڈر جو ہوتا ہے، اسی ڈر کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہرحال قرآن پاک میں تقوی کا حکم کئی جگہوں پر، بلکہ لکھا ہے 200 سے زیادہ مقامات ہیں کہ جہاں لفظ تقوی مختلف صیغوں کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے. تو اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی سے شریعت کیا مراد لیتی ہے؟ کیا کوئی آدمی دن بھر روزے رکھے، رات بھر اللہ کی عبادت کے اندر نمازیں پڑھتا رہے، تسبیح ہاتھ میں لے کے چلتا رہے، اس کا نام تقوی ہے؟ نہیں، تقوی اس کا نام نہیں. حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جامع العلوم والحکم، اس میں انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، لیس تقوی اللہ بسیام النہار ولا بقیام اللیل ولیکن تقوی اللہ ترک ما حرم اللہ وادا و مفترض اللہ. تقوی یہ دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے ان کو ادا کرنا، بجا لانا، اس کا نام تقوی ہے. اسی کتاب میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، المتقون الذین اتقوا ما حرم اللہ علیہم وادو مفترض اللہ علیہ. متقی کن کو کہتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور ضروری قرار دیا ہے ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، گویا فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام تقوی ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے. پوچھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام جو ہے اس امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان अपना रास्ता बदल देता है। शैतान जैसा शैतान जो है वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से डरता था। तो बहरहाल यही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत उबई इब्ने काब ये भी बड़े जलील कदर सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन चार सहाबा से कुरान पाक सीखने का हुक्म दिया, बुखारी शरीफ में रिवायत है इस्तक़रउल कुरान मिन अरबातिन अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन व सालिम मौला अबी हुज़ैफा व उबै इब्ने काब व मुआद इब्ने जबल। चार आदमियों से कुरान सीखो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत सालिम मौला अबी हुज़ैफा और हजरत उबै इब्ने काब और हजरत मुआद। हजरत उबै रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुल अंसार उनका लकब था, बड़ा ऊंचा मकाम था अंसार में और बारगाह नबूवत से उनको लकब मिला था अकरहुम उबै। बुखारी शरीफ में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से वो जुमला मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उबै के मुतालिक फरमाया कि हजरात सहाबा में कुरान पाक के पढ़ने के गोया सबसे ज्यादा माहिर कौन है, हजरत उबै ने कहा। बल्कि उनका वाकया बुखारी शरीफ में मौजूद है कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया उबै अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सूरह लम यकुनिल लदीना कफरू पढ़कर सुनाऊं। तो हजरत उबै ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा नाम लेकर यह फरमाया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ अल्लाह ताला ने आपका नाम लेकर फरमाया। ये सुनकर हजरत उबै रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और ये आंसू खुशी और मसर्रत के थे, जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। तो बहरहाल इन्हीं हजरत उबै रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा तकवा क्या है। तो जवाब में हजरत उबै रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या अमीर अल मोमिनीन हर सलकत तरीकन ज़ा शौकतिन, के अमीर अल मोमिनीन कभी आप कांटेदार रास्ते से गुजरे हैं? कोई ऐसा रास्ता जिसमें दोनों तरफ कांटे की बाढ़ हो और बीच में एक छोटी सी पगडंडी हो गुजरने के लिए, ऐसे रास्ते से गुजरने की नौबत आई है? का जी हाँ। का मादा फाल्त, उस वक्त आपने क्या किया? का शंबर तो सुम्मस दहत, तो अपने कपड़ों को खूब अच्छी तरह समेट कर व्या महफूज करके कोशिश करके अंदर से निकल गया ताकि कपड़े कांटों में उलझने न पाए। का बस यही है तकवा, इस दुनिया के अंदर गोया गुनाहों के कांटे बिछे हुए हैं, आदमी अपने आप को उसमें उलझाए बगैर गुजर जाए, इसी का नाम तकवा है। खल्लि ज़ुनूब सगीरा व कबीरा ज़ाकत तुका, गुनाहों को छोड़ दो चाहे छोटे हों या बड़े हों, यही है तकवा, गुनाहों के छोड़ने का नाम तकवा। एक सालिक ने अपने शेख से पूछा कि बदनिगाही ये सगीरा गुनाह है या कबीरा? शेख ने जवाब में कहा कि भाई देखो, कोई आदमी कोई छोटी सी चिंगारी हो छोटी समझकर अपने कपड़ों के बक्सा में नहीं रखता, आग लगाने के लिए छोटी चिंगारी हो या बड़ा अंगारा हो दोनों बराबर हैं, और वो आग जब लगेगी तो तुम्हारे मकान को खाकिस्तर कर देगी। तो हकीकत तो ये है गुनाह गुनाह है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकूला है किसी गुनाह को छोटा समझकर करो मत और किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ो मत। कोई गुनाह छोटा समझकर करो मत, पता नहीं अल्लाह की नाराजगी का जरिया बन जाए और तुम्हारे खिरमन ईमान को तबाह करने का जरिया बन जाए। बाद मरतबा छोटे छोटे गुनाह होते हैं लेकिन वो आदमी को ईमान से महरूम कर देते हैं। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती में वाकया बयान किया है कि एक आदमी ने जो है एक मौज़िन था, अजान देने के लिए चढ़ा अपने मामिनारे के ऊपर, करीब में किसी मजूसी नसरानी या मजूसी का मकान था, नज़र पड़ी उस उसकी लड़की नज़र आई, बस दिल उस पर आ गया, जाकर के उसके लिए पैगाम निकाह पेश किया। उसके बाप ने कहा मेरा तो नसरानी या मजूसी हूँ, तू मुसलमान है? तो कहा मैं इस्लाम छोड़ता। ये बदनिगाही के नतीजे में और फिर निकाह की नौबत भी नहीं आई, दूसरे मौके पर चढ़ा गिरा और मौत आ गई। तो बहरहाल कभी छोटा सा गुनाह आदमी को ईमान से महरूम करने का जरिया बनता है, और कभी हज़रत आयशा फरमाती किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ो मत। कभी ऐसा होता है कि नेकी का काम बहुत छोटा होता है लेकिन जो है वो अल्लाह के यहाँ ऐसा कबूल होता है। एक बुजुर्ग का इंतकाल, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ में वाकया मौजूद है, एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद अल्लाह तबरक तआला ने पूछा क्या लेकर के आए हो, तो उन्होंने सोचा अल्लाह की बारगाह के लायक कौन सा अमल है, हमारे हर अमल के अंदर कहीं ना कहीं कोई रिहा या सुमा यानी दिखलावे या शोहरत के कया और कोई चीज़ बदनीयती की हो। बहुत सोचने के बाद जवाब में कहा मैं तौहीद लेकर के आया, तौहीद ईमान लिए। तो जवाब में बारी ताला ने फरमाया वो दूध वाली रात याद है। हुआ ये था कि एक मरतबा दूध पिया था और रात को पेट में दर्द हुआ, तो दिन में यूं कहते हैं रात दूध पिया उसकी वजह से पेट में दर्द हुआ। ये तौहीद का दावा करते हो और दर्द की निस्बत करते हो किसकी तरफ, दूध की तरफ, डर गए कि अब तुम्हारे गए। अल्लाह तआला ने फरमाया जाओ। एक मरतबा सर्दी के अंदर बिल्ली का एक बच्चा ठिठर रहा था, तुमने उसको अपने लिहाफ में ले करके जो है पनाह दी, यहाँ तक उसकी सर्दी दूर हुई और वो खुद चला गया, उसी पर हम तुम्हारी मगफिरत कर देते हैं। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि कोई नेकी देखने में कभी छोटी होती है और अल्लाह ताला के यहाँ उसी की वजह से नजात हो जाती है। बुखारी शरीफ में वाकया मौजूद है, एक आदमी जा रहा था, प्यास का एहसास हुआ, जंगल के अंदर कच्चा कुआं था, वहाँ डोल और रस्सी नहीं थी, वो उतरा। कच्चे कुएं जो होते हैं उनमें कुएं की दीवार के ऊपर खाने बने हुए होते हैं, हाथ और पांव के जरिए से सहारा लेकर उतरा और पानी पिया और फिर बाहर वापस आया। देखा एक कुत्ता जो है वो प्यास की वजह से वहाँ पड़ी हुई गीली मिट्टी को चाट रहा है। ये मंजर देखकर उसके दिल में ख्याल आया कि प्यास की वजह से जो तकलीफ और अजियत मैंने महसूस की थी ये कुत्ता भी उसी से दो चार है। तो उसको रहम आया और फिर वहाँ कोई डोल रस्सी थी नहीं, कोई बर्तन नहीं था, उसके पाँव में चमड़े के मोजे थे, वो उतारे और फिर दोबारा कुएं में उतरा, मोजों में पानी भरा और उन मोजों को अपने मुंह में दबाया दांतों में, इसलिए कि हाथ और पांव को तो वो खानों में डालकर चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चुनांचे बाहर आकर के वो पानी पिलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी पर अल्लाह तबरक तआला ने उसकी मगफिरत फरमा दी और जन्नत का फैसला फरमाया। हजरत सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह अलना फिल बहाई में अजरन, ये अल्लाह के रसूल क्या इन जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें उस पर भी हमको सवाब और अजर मिलेगा। तो जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी कुल्ले जाते कबे दिन रतबतिन जिक्रुन अजरुन, कि हर तर जिगर वाले यानी हर जानदार के साथ चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो अगर आप भलाई और नेकी करेंगे तो उस पर अल्लाह तबरक तआला की तरफ से अजर और सवाब मिलेगा। तो मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि कोई गुनाह छोटा न समझा जाए, और तकवे का मतलब ही ये है कि आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाने का अहतमाम करे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके मुतालिक दुआ फरमाई थी कि अल्लाह तुम उनको कुरान पाक का इल्म अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन। तो उनसे किसी ने पूछा रजुलुन कलीलुल अमल कलीलुल ज़ुनूब आजबो इलैका अम रजुलुन कसीरुल अमल कसीरुल ज़ुनूब, एक आदमी है आमाल कम करता है, फराइज पर इक्तिफा करता है, कोई ज्यादा नफलें पढ़ता नहीं, नफल रोजे नहीं रखता, नफलें नहीं पढ़ता और ज्यादा नफल आमाल नहीं करता, अल्बत्ता फराइज वाजिबात पर इक्तिफा करता है, वह कलीलु जुनूब और गुनाह भी कम, गुनाहों से बचने का अहतमाम करता है, न किसी की गीबत करता है, न किसी पर बोहतान लगाता है, न किसी का हक मारता है, न किसी को तकलीफ पहुंचाता है, हर किस्म के गुनाह से बचने की कोशिश करता है। आज वो ही नहीं, ऐसा आदमी आपको ज्यादा पसंद है, ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب, یا وہ آدمی جو بہت نیکی کے کام کرتا ہے, فرائض واجبات تو کرتا ہی ہے, رات بھر نفل بھی پڑھتا ہے, دن بھر روزے رکھتا ہے, 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح لیے رہتا ہے, اور بھی نیکی کے بہت سارے کام کرتا ہے, لیکن گناہوں سے بھی بچتا, اس کو گالیاں دی, اس کی غیبت کی, اس کے پیچھے پڑا, اس کی تکلیفیں پہنچائی, اس سے کوئی بچا ہوا ہی نہیں ہے, ایسی عبادت تو کرتا ہے لیکن یہ حال ہے اس کا. تو وہ اچھا یا پہلے والا اچھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں فرمایا, لا اعدل بالسلامت, گناہوں سے بچنے کی جو خوبی ہے اس کے برابر کوئی اور خوبی ہو سکتی نہیں ہے. یہ گناہوں ہمارے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ بھائی عام طور پر ہمارا مزاج کیا ہے, کوئی آدمی جب دینداری کی راہ پر آنا چاہتا ہے نا, تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نفل اعمال زیادہ سے زیادہ کروں, میں تہجد پڑھوں, عوابین پڑھوں, اشراق پڑھوں, چاشتہ پڑھوں, نفل, یہ اعمال یقیناً اللہ کے قرب کا باعث ہیں, یہ جتنے بھی نفل اعمال ہیں, روزہ ہو, نماز ہو, صدقہ ہو, تسبیحات ہوں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ کرے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. کل کو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے نفل روزے کیوں نہیں رکھے, تہجد کیوں نہیں پڑھی, عوابین کیوں نہیں پڑھی, چاشتہ کیوں نہیں پڑھی, یہ نہیں پوچھا جائے. لیکن گناہ ایسا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لیا تو اس گناہ کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا, سوال ہوگا. ہمارے بزرگوں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ بھائی دیکھو ایک آدمی ہے, وہ خوب جو ہے نا مقویات استعمال کرتا ہے, جسم کو طاقت دینے والی چیزیں, اچھے اچھے قیمتی خمیرے, ٹونک اور ایسی غذائیں جو خوب آدمی کے جسم کو طاقت پہنچائے استعمال کرتا ہے, لیکن ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی استعمال کر رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ جو ہے نا مقویات زہر کے نقصان سے اس کو بچا نہیں سکتا, کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, ہو سکتا ہے زہر کی وجہ سے موت آ جائے. اس کے برخلاف ایک دوسرا آدمی ہے جو مقویات استعمال نہیں کرتا, ٹونک نہیں استعمال کرتا, خمیرے نہیں استعمال کرتا, بیچارے کو دال روٹی میسر ہے, لیکن جسم کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز وہ استعمال نہیں کرتا, تو اس کے متعلق گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے تندرست رہے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی چاہے کتنے ہی نفل اعمال کرتا ہو لیکن ساتھ میں اگر گناہوں کا ارتکاب ہے تو یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے. اسی لیے تقوی کا حکم دیا گیا. تقوی کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات کو ہم پڑھتے ہیں, ان کی زندگیوں میں جو چیز ہمیں کھلم کھلی معلوم ہوئی کہ چھوٹے سے گناہ پر بھی وہ کیا ہو جاتے تھے, بے چین ہو جاتے. جب تک کہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لیں وہاں تک ان کو چین اور سکون نہیں ہوتا تھا. ایک صحابی ہیں, وہ ان کے کھجور بیچتے تھے, ایک عورت کھجور خریدنے کے لیے آئی, کہا جب بس نفس کا تقاضا ہوا, کہا اندر اچھی کھجور ہے, اور پھر بوسا لے لیا. بس بوسا لینے کو تو لے لیا لیکن فوراً دل میں احساس ہوا کہ میں نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کیجئے. حد جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے, جیسے زنا کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے, ورنہ پتھر مار کے ختم کر دیا جائے, تو وہ گویا سزا جاری کر کے مجھے پاک کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا, اس نے قصہ بیان کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا, اذان ہوئی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی, پھر اس آدمی نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. کہا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی نا. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں, اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات, بس تمہارے ہمارے ساتھ اس نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ گناہ گویا معاف ہو گیا. اس آدمی نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا क्या मेरे लिए खास है अम लिन्ना से आम मतन। इब्ने मसूद की रिवायत है बुखारी शरीफ में, क्या ये खास मेरे लिए है या तमाम लोगों के लिए? कहा नहीं, तमाम लोगों के लिए। तो गोया जो सगीरा गुनाह है वो इन तरह इस तरह नेकियों से भी माफ होते हैं, कबीरा नहीं माफ होते। फजाइल नमाज में आपने सुना होगा जहाँ नमाज की मिसाल दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी आदमी के मकान के सामने कोई नहर बहती हो और 5 मरतबा उसमें गुसल करता हो तो क्या उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल बाकी रहेगा? साहबा ने अर्ज़ किया हरगिज़ नहीं। क्या बस नमाज पढ़ने वाले का यह हाल है, कोई गुनाह नहीं। वहाँ आपने पढ़ा होगा कि वहाँ मुराद कौन से गुनाह हैं? सगीरा। बाकी कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह, वो तो तौबा के बगैर माफ़ होते नहीं। और एक मोमिन की शान भी यह है कि उससे कबीरा गुनाह का सुदूर न हो, वो तो कर ही नहीं सकता। खैर, तो बहरहाल तकवा का हासिल क्या हुआ? तकवा का हासिल यह है कि आदमी अपने आप को अल्लाह ताला की नाफरमानी और मासियत से बचाए, छोटी हो या बड़ी हो। ये पहली चीज, इत्तकिल महारिम तकुन आबद अन्नास। सबसे बड़ी इबादत यह है, गोया आप सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हैं तो उसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अपने आप को गुनाहों से बचाने का अहतमाम किया जाए। दूसरी नसीहत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वर्ग बेमा कसम अल्लाह लका तकुन अगनन नास। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी किस्मत में जो लिख दिया, तुम्हारे लिए जो तजवीज़ कर दिया, तुम्हारी गोया मुकद्दर में जो रोजी लिख दी, उस पर राजी हो जाओ, तुम सबसे बड़े गनी हो जाओगे, सबसे बड़ा गिना। और अब देखो लफ्ज़ गनी का तर्जमा आम तौर पर उर्दू में हम करते हैं मालदार, लेकिन हकीकत में मालदार ये उसका हूबहू तर्जमा नहीं है, ये याद रहे। गनी का लफ्ज़ अरबी में आम तौर पर बोला जाता है उस आदमी के लिए जो अपनी ज़रूरियात के सिलसिले में किसी का मोहताज न हो, बेनयाज। उसका तर्जमा यूं कर सकते हैं बेनयाज, जो किसी के सामने गोया उसको हाथ फैलाने की नौबत ना आए। चूँकि आम तौर पर जिसके पास पैसे होते हैं, दौलत होती है, वो अपनी ज़रूरियात के लिए किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं है, इसलिए तर्जमा उसका गनी का मालदार से करते हैं। वरना अगर गनी ऐसा है कि पैसों का ढेर होने के बावजूद ऐसी लालच दिल में बैठी हुई है कि बस पैसा 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 24 घंटा उसी के अंदर लगा हुआ है, तो वो गनी क्या हुआ? वो तो फकीरों से बढ़ करके गया मोहताज हुआ है, सुना है कि नहीं? असल में हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल गिना गिनन नफ्स लैसतिल गिना बिकसरतिल अरज, इन्नल गिना गिनन नफ्स, कि माल और सामान और दौलत की ज्यादती का नाम गिना नहीं है। किसी के पास दौलत ज्यादा है वो गनी नहीं, गिना किसका नाम है? इन्नल गिना नफ्स, दिल की बेनियाजी। आदमी के दिल में अल्लाह ताला ऐसी कैफियत पैदा कर दे कि अल्लाह ताला के फैसले पर, अल्लाह ताला ने जो चीज उसके लिए तजवीज कर दी उस पर क्या हो जाए? राजी हो जाए। कनात और रजा बिल कजा, ये दो चीजें गिना में पाई जाती। कनात का मतलब यह है कि आदमी अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए शरीयत के हुदूद में, शरीयत की बॉर्डर में रह करके हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करे, हराम से अपने आप को बचावे, और उसके बाद इन कोशिशों के बाद जो मिल जावे उस पर क्या हो जावे? राजी रहे। ये रजा बिल कनात, यानी पहले कोशिश तो अपनी तौर पर तदबीर की शरीयत के उसूल के मुताबिक, और उसके बाद भी जो मिला, क्योंकि मिलेगा वही जो अल्लाह ताला के यहाँ तय हो चुका है, तो जो मिला है उस पर दिल से क्या रहे? राजी। ज्यादा की तमन्ना ना करें। ये ज्यादा की ख्वाहिश ऐसी है कि बड़े बड़े मालदार, शेख सादी कहते हैं आना के घनी तरंग मोहताज तरंग, ये जो जितने ज्यादा मालदार हैं उतने ज्यादा मोहताज। उनकी जरूरतें देख लीजिए, उनको किसी का चैन पड़ता नहीं है। एक गरीब तो बेचारा सूखी रोटी और चटनी मिल जाए तो वो खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, और मालदार को तो 10 किस्म की गिजाएं मिले तो भी उसका पेट भरता जी भरता नहीं है। तो हकीकत तो यह है कि आदमी की ख्वाहिशें जो है ना, उन ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। हकीकत तो यह है कि ये इंसान के दिल के अंदर जो एक ख्वाहिश पैदा कर की गई है ना, तो आदमी माल आज दुनिया के अंदर क्या है, दौड़ है माल कमाने की, इतना कमाया मैं इतना कमाऊं, आपस में रेस है, मुसाबकत है, मुकाबला है, और उसी के नतीजे में क्या होती है, हसद पैदा होता है, बुग्ज पैदा होता है ना, और जो है एक दूसरे का कीना दिल में पैदा होता है, ये जो कुछ है वो सब इसी का। लेकिन अल्लाह के फैसले पर अगर राजी रहे तो कोई इश्काल नहीं। इसीलिए हदीस में आता है कि दुनिया के मामले में आदमी को चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के मामले में आदमी को चाहिए कि अपने से जो निचले लेवल का है ना उसको देखे, ताकि अल्लाह की नेमत की नाकदरी न हो, शुक्र अदा हो। अगर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे पाँव में जूते नहीं थे, दिल में बड़ी हसरत हुई कि जूते नहीं है, तकलीफ होती है, अल्लाह मेरे पास जूते नहीं है, का निकला तो देखा कि एक आदमी के पाँव ही नहीं थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है पाँव तो है मेरे, चल तो रहा हूँ, भले जूते नहीं है तो क्या हुआ। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र आदमी वही अदा कर सकता है जो अपने से नीचे वाले को देखे, ऊपर वाले को देखेगा ना तो कभी जिंदगी में सुकून और चैन मिलने वाला जिंदगी इसी हाय हाय में खत्म हो जाए। तो उसी को क्या फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्द बेमा कसम अल्लाह लका तकुन अगनन नास, अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत के अंदर तुम्हारे लिए जो तजवीज कर दिया तुम्हारी रोजी, अल्लाह कन्नी बेमा रजक कनी, जो तवाफ के वक्त दुआ करते हैं, ए अल्लाह तूने मुझे जो रोजी दी उसके अंदर मुझे कनात अता फरमा, वह उसी पर मैं राजी रहूं, यही है हकीकत में चैन और सुकून की, वरना ये ख्वाहिशात तो इतनी है कि उसकी कोई गोया इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला के जो बंदे अल्लाह के फैसले पर और मुकद्दर पर राजी रहते हैं, वो किसी बादशाह की हुकूमत की भी तमा और हिर्स करते नहीं। हज़रत शाह गुलाम अली साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के अकाबरीन खलफा में से थे, बल्कि उन्हीं के वजह से ये सिलसिले नक्शबंदिया शाम और इसी तरीके से इराक के इलाके तक पहुंचा है और दूर की रियासतों में पहुंचा है। हज़रत मौलाना इनिया साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है उनकी खानकाह के अंदर 500 ज़ाकिरीन तो मुस्तकिल रहते थे, और रोज़ाना आने जाने वाले मेहमानों की तादाद उसके अलावा, तो उनके यहाँ जो लंगर था मेहमान के लिए खाने पकते थे, तो टोंक के जो नवाब थे मीर खान, वो हजरत के अकीदतमंद थे, उनसे बैत थे, उन्होंने सोचा कि इनके यहाँ इतने सारे मसारिफ कैसे पूरे होते होंगे, तो उन्होंने जो है एक जागीर, पहले ज़माने में बादशाह लोग या नवाब लोग जो होते थे, कोई बड़ी ज़मीन होती थी, कोई पूरा एक स्टेट या पूरा जो है एक सूबा या जो एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का जिसकी बड़ी आमदनी हो सालाना, वो किसी को दे देते थे, उसके नाम लिख देते थे कि भाई इसकी जो भी आमदनी हो आप हासिल कीजिए। उन्होंने एक जागीर एक तांबे के इसके ऊपर लिख करके उनके पास भेजी कि इसकी सालाना इतनी हज़ारों और लाखों की आमदनी है, आपके मसारिफ उससे पूरे हो जाएंगे। तो उसके जवाब में हज़रत शाह गुलाम अली साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पीछे एक शेर लिखा कि माँ आबरू ये फ़क्र व कनात नमी भरें बा मीर खां भुगो के रोज़ी मुकद्दर हस्त, कि हम अपने फ़कीरी और कनात की इज़्ज़त आबरू को खोना चाहते नहीं है, मीर खां से कहो कि रोज़ी मुकद्दर है, अल्लाह ताला ने रोज़ी तय कर दी है, तुम्हारे देने नहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हकीकत तो यह है कि अल्लाह के दिए हुए पर जो लोग राज़ी रहते हैं उनको इसी तवक्कुल इसी का नाम है कि अल्लाह के वादे पर उससे ज़्यादा यकीन हो जो अपने पास जेब में है उसके मुकाबले में। जेब में पैसे होते हैं ना तो आदमी को एक सुकून होता है ना, कि है भाई अपनी ज़रूरत पूरी, तो जेब में जो अपने हाथ में जो माल है उस पर जितना उसको यकीन है और उस पर जितना इत्मीनान है, अल्लाह के वादे पर उससे ज़्यादा इत्मीनान हो, यह है हकीकत तवक्कुल की। तो बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वर्ज़ा बेमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन नास, अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में जो तजवीज कर दिया उस पर राज़ी रहो, तुम सबसे बड़े मालदार हो जाए। मालदारी इसी का नाम है, बेनियाजी, बे गोया किसी की एहतियाज न हो। और तीसरी बात फरमाई वासिन इलाजारे का तकुन मोमिन, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो तुम मोमिन कहलाओगे, गया कामिलुल ईमान बन जाओगे। ये पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी ताकीद फरमाई। बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन कान यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यूज़े जारह, कि जो तुम में से कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। एक और इरशाद है, मन कान यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यौसिन इला जारी, कि जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करे। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद तो बड़ा अजीब व गरीब बुखारी शरीफ ही के अंदर है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह ला युमीन वल्लाह ला युमीन वल्लाह ला युमीन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं। तीन मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला दोहराया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रात सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक था और हुजूर के इरशादात की जो कदर व कीमत उनके दिलो दिमाग में थी, उसके पेश नज़र इन कलमात को सुनकर उनके दिल की क्या हालत हुई होगी। बेचैन होकर पढ़ा, मैं या रसूल अल्लाह, आप बार बार तीन मरतबा कसम खाकर जिस आदमी के मुतालिक फरमा रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, कौन ये अल्लाह के रसूल? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लाया मनो जारुहु बवायकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तरफ से पहुंचने वाली ईज़ाओं और तकलीफों से मामून न हो। मामून का लफ्ज इस्तेमाल किया, महफूज का नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलागत पर और फसाद पर कुर्बान जाइए। एक तो महफूज का मतलब यह है कि गोया उसके पड़ोसियों को कोई तकलीफ न पहुंचे, और मामून का मतलब यह है कि पड़ोसी को उसकी तरफ से तकलीफ पहुंचने का दिल में कोई खतरा ही न हो, अंदेशा न हो। बाद मरतबा लोग आकर कहते हैं, मतलब जरा दुआ करना भाई, खाई पड़ोसी का मामला है, क्यों भाई क्या कोई तकलीफ है? तकलीफ तो आज तक नहीं पहुंचाई, लेकिन उसका जो नेचर है ना, उसकी तबीयत है, खतरा है, पता नहीं कभी क्या कर डाले। देखो तकलीफ आज तक नहीं पहुंची लेकिन खतरा महसूस करता है, तो तकलीफ। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसकी पहुंचने उसकी ईजाओं से महफूज हो, बल्कि यूं फरमाया मामून हो, यानी जिसको अंदेशा भी ना हो, दिल में कभी भूले से खतरा भी ना हो कि इससे मुझे उसकी जात से इतना इत्मीनान हो उस पर। तो ये गया ईमान। आज क्या हो गया? आज हमारा हाल ये है कि पड़ोसी तो बाजू में रहता है। वैसे पड़ोसी किसको कहते हैं? खाली अब आपके मकान की दीवार और उसकी दीवार एक हो, ऐसा नहीं, बल्कि पड़ोस जो है 40 मकानों तक है। कई रिवायत, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला की रिवायत, हज़रत सुफयान इब्न उयना से मनकूल है, हज़रत अली से मनकूल है, उसमें 10-10 बाज़ों ने तो कहा चारों तरफ 10-10 मकाना, बाज़ों ने कहा चारों तरफ जो है वो 40-40 मकाना तक पड़ोस। बाज़ कहते हैं फजर की नमाज में मस्जिद में जो आपके साथ, क्योंकि आमतौर पर दिन में तो लोग कारोबार में होते हैं, दूसरी जगहों पर भी नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज आमतौर पर आदमी अपनी अपने मोहल्ले में अपने इसमें पढ़ता है मस्जिद में, फजर की नमाज में जो आपके साथ साथ हैं वो गए आपके पड़ोसी। तो बहरहाल पड़ोस उसको पड़ोसी से ताबीर किया कि उसको कोई तरह, वो तो दूर की बात है। आज तो हमारा हाल ये हो गया कि हमारे घर के लोग, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई बहन हमारी तकलीफों से मामूली ही नहीं, महफूज भी नहीं। आज हाल यह है कि आदमी घर में आता है ना तो बीवी और बच्चे अल्लाह से दुआ कर रहे, मुझे भला कहाँ आई, जावे तो अच्छा है। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि उनके घर में आने पर एक गोया हौल और खौफ तारी हो जाता है घर के लोगों पर, ये जावे तो हमें सुकून मिले गोया। और इन सारी हरकतों के बावजूद हुजूर तो फरमाते मोमिन नहीं है ना, कि वो आदमी मोमिन नहीं। और हमारा हाल ये है कि हमारे मिजाज ऐसा है कि हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे हमसे खाइफ हैं, डर रहे हैं, फिर भी हमारा तकवा, हमारी बुजुर्गी, हमारा हजरत होना जू का तू, फिर भी हम हजरत कहलाते हैं, मुफ्ती साहब कहलाते हैं, हाफिज साहब कहलाते हैं, कारी साहब कहलाते हैं, मुबल्लिग साहब कहलाते हैं, हजरत कहलाते हैं, हजरत की हजरतियत पर भी कोई आंच नहीं आती, और यहाँ घर के लोग तो परेशान हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं फरमाते हैं कि पड़ोसी भी अगर मामून नहीं है तो वो मोमिन नहीं। हुजूर ईमान की नफी फरमाते हैं। अंदाजा लगाओ, हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेने की जरूरत है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहसिन इला जारे का तकुन मोमिनन, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम क्या बन जाओगे? मोमिन। गोया ईमान इसी का नाम है, गोया इसी से तो पता चलता है लोगों के साथ आपका क्या सलूक। ये नमाजें कितनी पढ़ते हैं, ये नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा एक आदमी से दूसरे आदमी के मुतालिक पूछा, कैसा आदमी? का बहुत अच्छा आदमी। क्या कभी तुमने उसके साथ कोई मामला किया? तो कहा नहीं। कोई सफर किया? तो कहा नहीं। अल्लाह अल्लाह का राय तो यार कहो यस जो दो, शायद तुमने उसको नमाज पढ़ते हुए देख लिया होगा, इसलिए तुम उसके मुतालिक ये रिव्यू और तबसरा कर रहे हो। नहीं नहीं, मामला किया तो मामले में कैसा है, वो पड़ोस में रहते हैं, सफर किया है तो सफर में उसके अखलाक को अगर जांचा है और उसके बाद तुम उसके मुतालिक ये रिपोर्ट देते हो तो काबिल कबूल है। तो हकीकत तो यह है कि आदमी का पता उसी में चलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहसिन इला जारे का तकुन मोमिनन, तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम क्या बनोगे? मोमिन कहलाओगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिह। आगे हुजूर फरमाते हैं, वाहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अजीब गरीब इरशाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज अगर हुजूर के इसी एक इरशाद को हम ले लें तो हमारी मुआशरत, हमारी सोसाइटी जो है ना, जन्नत का नमूना बन जाएगी। हर आदमी सोच ले, अगर आप जो है ना किसी के साथ कोई मामला करते हैं, किसी के पैसे दबा रहे हैं, तो आप उस वक्त तो सोच लीजिए कि कोई मेरे पैसे दबाता तो क्या मैं इसको पसंद करता? नहीं ना। जब नहीं करता तो मुझे भी चाहिए कि मैं किसी दूसरों के पैसों को बर्बाद न करूं। मैं और आप किसी की बहू बेटी को, किसी की बहन को गलत निगाह से, शहवत की निगाह से देख रहे हैं तो उस वक्त सोच लेने की जरूरत है कि हमारी बहू बेटी को, हमारी बहन को कोई शहवत की निगाह से देखता तो क्या हम उसको अपने लिए पसंद करते? नहीं करते। तो हमें भी ये काम नहीं करना चाहिए। हम किसी को गाली दे रहे हैं तो उस वक्त सोच लो कि कोई हमको गाली देता तो क्या हम उसको अपने लिए पसंद करते? नहीं करते। कोई हम किसी की गीबत कर रहे हैं तो क्या कोई हमारी गीबत करता और हमें पता चलता कि महफिलों में हमारे मुतालिक ऐसी बातें हो रही हैं तो क्या हमारा दिल इसको गवारा करता? तो हम दूसरों के लिए जो चीज भी हम दूसरे के साथ करने जा रहे हैं, सोच लो कि यही सलूक, यही मामला हमारे साथ किया जाता तो क्या हम उसको अपने लिए पसंद करते? नहीं करते। तो अब हमारे ईमान का तकाजा यह है कि हम अपने मुसलमान भाई के लिए भी उसको पसंद न करें। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिह, तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा है कि एक मरतबा एक बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, उनके घर में चूहे पड़ गए ज्यादा, उन चूहों की वजह से बिल्कुल वो परेशान हो गए। अपनी मजलिस में तज़किरा किया कि भाई चूहों ने बहुत परेशान कर रखा है। किसी ने मशवरा दिया, हजरत बिल्ली पाल लीजिए, उससे चूहों का इलाज हो जाएगा। खैर बात आई गई हो गई, उस मशवरा देने वाले ने मशवरा दे दिया। फिर चंद दिनों के बाद फिर उन्होंने फरियाद की कि भाई ये चूहों की वजह से मैं तो तंग आ गया हूँ। तो जिसने बिल्ली पालने का मशवरा दिया था उसने फिर जरा कड़क करके कहा, हजरत आपको पहले ही बतला दिया था कि बिल्ली पाल लीजिए, आप बिल्ली तो पालते नहीं और चूहों की फरियाद करते रहते हैं, क्यों नहीं पालते? बुजुर्ग ने जवाब में कहा, भाई बिल्ली इसलिए नहीं पालता हूँ कि अगर मैं बिल्ली पालूंगा तो बिल्ली को देखकर मेरे घर के चूहे मेरा घर छोड़कर पड़ोसी के घर में चले जाएंगे, और जिस चीज़ को मैं अपने लिए पसंद नहीं करता अपने भाई के लिए क्यों पसंद करूँगा। ये उसने सुलूक इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया बयान किया है, बड़ा अजीबोगरीब बड़ा अच्छा वाकया है। शेख सादी रहमतुल्लाह, अब तो फारसी भी हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती, पुराने ज़माने में मदारिस के निसाब में वो भी पढ़ाई जाती थी। वो वाकयात बयान करने के साथ नसीहत की बात जो है अशार और रुबाई की शक्ल में कहते हैं। एक अल्लाह वाले थे, वो उनके पास कुछ सामान नहीं था, एक गुदड़ी थी, उसी को आधी बिछाते थे और आधी ओढ़ते थे। एक मरतबा जो है ना अपने घर में इसी तरह आधी बिछाए और आधी ओढ़े हुए सोए थे, और एक चोर घुसा। चोर तो उम्मीद लेकर आया था कुछ होगा, इन्होंने भी देखा कि कोई चोर आया है और ये अपने कोने में पड़े हुए हैं। चोर आके उधर पीछे की तरफ गया, इनको मालूम था कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो जब चोर उधर गया तो वो गुदड़ी जो एक की एक उनके पास थी वो निकाल कर चोर के रास्ते में डाल दी ताकि खाली हाथ न जावे। बेचारा उम्मीद लेकर के आया है, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। ये एक वाकया बयान करके इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रुबाई कही है, दो शेर कहें। शनीदम के मर्दान राह खुदा, दिले दुश्मना हम न करदंद तंग, तुरा के मयसर शबनी मकाम के बाद दोस्तानत खिलाफस तो जंग। हमने सुना है कि अल्लाह वाले दुश्मनों का दिल भी दुखाया करते नहीं है। ए मुखातब, तुझे ये मकाम कैसे हासिल होगा कि तेरी तो अपने दोस्तों के साथ लड़ाई रहती है। हमारी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई रहती है, दुश्मनों के साथ तो क्या उसने सुलूक करते। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाहिब लिन्नास मा तुहिब लिनफ्से का, लोगों के लिए भी वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। और अखीरी बात जो आपने फरमाई, वला तुकसिरि ज़ह का फ़ैन कसरत ज़ह के तुमीतुल क़ल्ब, के तुम ज़्यादा हंसा मत करो इसलिए कि ज़्यादा हंसना दिल को मार देता है। कोई हंसने की बात आ गई उस पर हंस दिए तो ठीक है, लेकिन इसी को मशगला बनाना, जैसे आजकल एक ये भी एक तरीका, लोगों की कमाई का जरिया, लोगों को चुटकुले ही सुनाते हैं घंटे दो दो घंटे, और उस पर उनको बाकायदा उजरत मिलती है और बाकायदा इसके टिकट रखे जाते हैं और लोग जाते हैं। ये वो तरीका है जिसकी शरीयत इजाज़त देती नहीं है। कोई बात हंसी की आ गई दौरान गुफ्तगू और सुनकर हंस लिए ठीक है, लेकिन इसको मशगला बनाना हुज़ूर फरमाते ये नहीं, इसकी वजह से आदमी का दिल मर जाता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लौ तअलमूना मा आलमू लज़हिक्तुम क़लीलन वला बकैतुम कसीरा, कि आखिरत की हौलनाक हालात जो मैं जानता हूँ अगर तुम जान लो तो तुम हंसोगे गम और रोए हंसोगे कम और रोओगे ज़्यादा। हकीकत तो यह है कि एक मोमिन को गया यही हमेशा धड़का लगा रहना चाहिए कि मालूम नहीं आखिरत में अल्लाह की तरफ से क्या मामला होगा। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पांच बातें जो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को आपने बतलाई थी, उन्होंने तो हम तक पहुंचा दी। सदियां बीत गई और वो आज बातें हम उनका तज़किरा कर रहे हैं। उन्होंने तो वो वादा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था वो पूरा किया, वो अमल भी किया होगा और पहुँचा भी दिया। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के दूसरे बंदों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक वतबारक इस्मुक वतआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں जारी करने और अपनाने की तो हमें तौफीक व सआदत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मोहब्बत और गैरों के तरीक़ों की नफ़रत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे। अल्लाह तेरी मर्जियात पर हमें ज़्यादा से चला दे। अल्लाह हम पर अपना खुसूसी फजल फरमा। हमें हमारे अहल वयाल और तमाम मुतालिकीन को सेहत कुव्वत आफियत सलामती दुनिया आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमा। हमारी तमाम ज़रूरियात की अल्लाह तो अपने ख़जाने गैब से किफालत फरमा। हमें किसी का मोहताज और दस्तनिगर न बना। हमारी रोज़ियों में बरकत और वसअत अता फरमा। हमारी औलादों को अकायद हक्का उलूम नाफिया आमाल साले अखलाक फाजिला से आरास्ता फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। मकरूज़ों के कर्ज़ों से अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा। क़ैद व बंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा। मुकदमात में माखूज़ों को बरी फरमा। जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है अल्लाह उससे नजात अता फरमा। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उसके ईमान व इस्लाम की जान व माल की इज़्ज़त व आबरू की अहल व आयाल की तिजारत व ज़रात व कारोबार की हर चीज़ की पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ मौजूद तेरे तमाम बंदों की जायज़ और नेक मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी अजमईन बिरहमतिक या